एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
नया फिर दिन हुआ,
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, हम तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को सुनने सके और समझने सके। मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें विशेष आशीष दे कि वे तेरे वचनों को सुनकर तेरे राह में चलने सके। मेरे संग पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है महान विवाद और आरंभिक कलीसिया। हम पढ़ते हैं प्रेरितों 4:13 में, जब उन्होंने पतरस और यहूना का साहस देखा और यह जाना कि ये अशिक्षित और साधारण मनुष्य हैं, तो वे चकित हुए और ध्यान से देखने लगे कि ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। यीशु को अपने अनुयायियों के सामने सबसे बड़ी बाधा उनकी पूर्व धारणाएं थी, उनकी पहले की सोच विचार। शिष्यों ने यीशु की कही बातों पर बहुत कम ध्यान दिया, अगर यह उनके अपने विचारों से मेल नहीं खाता था कि यीशु कौन होना चाहिए। उनके स्वर्ग आरोहण के समय तक शिष्यों ने अभी भी यीशु से रोमियों से इज़राइल को मुक्त करने के बारे में सवाल पूछे। 10 दिनों की प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति में घनिष्ठ संगति के बाद ही अंततः प्रबल पूर्वधारणाएं सत्य से प्रतिस्थापित होने लगी और शिष्य परमेश्वर द्वारा कही गई बातों को सुनने के लिए तैयार हो गए। इसने यीशु की मृत्यु के बाद उस पहले पिंतेकोस्त पर अविश्वसनीय घटनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने पुनरुत्थान की पुष्टि करने और परमेश्वर के राज्य को बेहतर ढंग से समझने की उनकी मदद करने के लिए शिष्यों के साथ 40 दिन बिताए। यह हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 1:3, 1 कुरिन्थियों 15:4-7 में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि जब वे यीशु के स्वर्ग जाने से ठीक पहले इकट्ठे हुए तो उनके दिमाग में सबसे ऊपर यही बात थी कि क्या यह यीशु के लिए रोमियों पर अंततः विजय पाने का समय था या नहीं। प्रेरितों के काम 1:6, उनके अपने विचार इतने प्रबल थे कि यीशु ने उनसे जो कहा था उसे उन्होंने सुना ही नहीं। दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक से 3.5 साल तक गहन शिक्षा के बाद भी शिष्यों के पास अभी भी कई गलत धारणाएं थी जिन्हें उन्हें भूलना था। ऐसी अज्ञानता के सामने हम यीशु के उत्तर प्रेरितों के काम 1:6-8 में पाते हैं। यीशु ने उनकी ध्यान असली मुद्दे पर केंद्रित किया। पवित्र आत्मा का शक्तिकरण राजनीतिक चर्चा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। यीशु को बादलों में चढ़ते और गायब होते देखने के बाद शिष्यों ने देखा कि उनके पास 2 आदमी खड़े हैं। उन 2 आदमियों ने उनसे कहा कि यीशु वापस फिर आएंगे, जिस तरह उन्हें एक विजयी राजा के रूप में स्वर्ग में स्वीकार किया गया था, उसी तरह वे फिर से राजा और विजेता के रूप में आएंगे, जिसका सपना उन्होंने अब तक देखा था जब उन्होंने उनसे इज़राइल के राज्य की बहाली के बारे में पूछा था। लेकिन वह दिन उनके सबसे बड़े सपनों से भी बढ़कर होगा, क्योंकि वे पूरी सृष्टि के राजा के रूप में आएंगे, ना कि केवल मध्य पूर्व में एक जमीन के टुकड़े के राजा के रूप में। 11 शिष्य जैतून के पहाड़ से यरूशलेम लौट आए। उनके सिर यादों से भरे हुए थे और उनके दिल यीशु द्वारा बताए गए सत्यों से चमक रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ और चाहिए था। यीशु ने उनसे कहा था कि वे कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें, जब तक कि पवित्र आत्मा उन्हें बपतिस्मा ना दे। प्रेरितों के काम 1:4-5। क्योंकि यद्यपि शत्रु पराजित हो चुका था, फिर भी उसका काम अभी समाप्त नहीं हुआ था और उन्हें वह करने के लिए ऊपर से शक्ति की आवश्यकता होगी जिसके लिए यीशु ने उन्हें बुलाया था। पहले की तुलना में अब हम पाते हैं प्रेरितों के काम 1:14 में कि शिष्यों के एक दूसरे से संबंध में मुख्य अंतर आया था, जैसा कि मती 20:20-24 में पहले देखा गया था। 10 दिनों तक यीशु के अनुयायियों ने प्रार्थना की, पवित्र शास्त्र के प्रकाश में यीशु के साथ अपने अनुभवों का मूल्यांकन किया, एक दूसरे के प्रति विनम्रता और स्वीकृति दिखाई और अंत में पवित्र आत्मा को उन पर सत्य को प्रभावित करने की अनुमति दी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई रचना थी। जल प्रलय के कुछ समय बाद पृथ्वी के निवासियों ने स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक मीनार बनाने का फैसला किया था, जिसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 11:1-9 में। परमेश्वर ने उनकी आम भाषा को भ्रमित कर दिया और उन्हें सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। उत्पत्ति 11:7-9 में आप इसे पा सकते हैं। पिंतेकोस्त के दिन परमेश्वर ने इसके विपरीत किया। यहाँ वह लोगों के एक समूह को देख सकता था जो बाबेल का नया मीनार नहीं बना रहे थे, बल्कि जो यह खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार थे कि एक दिन बुराई से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक दिन बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस दिन आकाश के नीचे की हर एक जाति से लोग यरूशलेम में थे। प्रेरितों के काम 2:5 में हम पाते हैं, और जब उन्होंने शिष्यों को अपनी ही भाषा में बोलते सुना तो वे अचंभे में इकट्ठे हो गए। प्रेरितों के काम 2:6-11। पतरस इसे उन्हें संबोधित करने के अवसर के रूप में उपयोग करता है। वह पवित्र आत्मा के उन्हें ले जाने की बात करता है, जो लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार करता है। वह मसीहा के असली मिशन की ओर इशारा करता है और उन्हें उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए फटकार लगाता है। वे दिल से कट जाते हैं, प्रेरितों के काम 2:37, और 3,000 बपतिस्मा लेते हैं और शिष्यों में शामिल हो जाते हैं, प्रेरितों के काम 2:41। कुछ लोग जिन्होंने शैतान की प्रेरणा से यीशु की मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, अब पवित्र आत्मा के प्रभाव में आकर यीशु में परिवर्तित हो गए हैं। यह हमें परमेश्वर की शक्ति के बारे में बताता है कि वह न केवल सबसे बुरे पापों को क्षमा कर सकता है, बल्कि सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकता है। प्रेरितों के काम 4:4 में हम महान विवाद में शैतान को अपना काम करते देखते हैं, परंतु प्रभु परमेश्वर भी अपने लोगों के साथ अपना काम करता है। हम पढ़ते हैं बहन एलन व्हाइट की पुस्तक में, पुजारियों और शासकों ने देखा कि मसीह की उनसे अधिक प्रशंसा की गई थी। जब सदुकियों ने, जो पुनर्थान में विश्वास नहीं करते थे, प्रेरितों को यह घोषणा करते हुए सुना कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो वे क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यदि प्रेरितों को पुनर्जीवित उद्धारकर्ता का प्रचार करने और उनके नाम पर चमत्कार करने की अनुमति दी गई, तो यह सिद्धांत कि पुनर्थान नहीं होगा सभी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और सदुकियों का संप्रदाय जल्द ही विलुप्त हो जाएगा। यह हम पढ़ते हैं द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, वन एलन जी वाइट की लिखी पुस्तक, पृष्ठ 78 में। सदुकियों लोग वे थे जो पुनर्थान में विश्वास नहीं करते थे। इन नेताओं को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हुई कि प्रभु ने पतरस के जरिए जो चंगाई की थी, जिसे हम प्रेरितों के काम 3:1-10 में देख सकते हैं। लेकिन जब इन नेताओं ने उनका सामना किया तो शिष्यों ने हिम्मत नहीं हारी। याजकों को अशिक्षित और अप्रशिक्षित लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, जैसा कि हम पाते हैं प्रेरितों के काम 4:13 में। शिष्यों को कमरे से बाहर भेजकर उन्होंने वापस में विचार विमर्श किया, यह सोचकर कि अगर वे इन लोगों को यीशु के नाम पर शिक्षा ना देने की आज्ञा देंगे तो वे विनम्रता पूर्वक उसका पालन करेंगे। वे कितने गलत थे। इसके बजाय शिष्य वापस चले गए और दूसरों के साथ मिल गए और साथ मिलकर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। उन्होंने और अधिक साहस के लिए प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर और अधिक चंगाई के लिए अपना हाथ बढ़ाए और परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनता है, उनके साथ अपना काम करता है, अपने प्रेरितों को चंगाई करने का शक्ति देता है, लोग आशीष पाते हैं। ये बेईमान नेता सत्य को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वफादार लोग अपनी बाइबल पढ़ते हैं और ईश्वरीय शक्ति बीमारी ठीक होने और आत्माओं की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। हालांकि कम से कम सतह पर चीजें हमेशा इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार महान विवाद में अंतिम जीत हमारी होगी, क्योंकि यीशु ने पूरी मानवता के लिए जो हासिल किया था वह निश्चित है। कलीसिया के शुरुआती दिनों में धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा सामना किए जाने वाले केवल शिष्य ही नहीं थे। स्टीफन नामक एक डीकन था जो कलीसिया का सेवक था, जो विश्वास और शक्ति से भरा हुआ था और लोगों के बीच बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाता था। हम इसके विषय में प्रेरितों के काम 6 में पाते हैं, खासकर प्रेरितों के काम 6:8 में इसे उनके सामने लाया गया। प्रेरितों के काम 7:2-53 में स्टीफनस उन लोगों को एक शक्तिशाली संदेश देता है जिन्होंने उस पर आरोप लगाया था। प्रेरितों के काम 7:54 में हम पाते हैं कि वे दिल से घायल हो गए, यानी वे उसके शब्दों से दोषी ठहराए गए। प्रेरितों ने अब तक नेताओं को चुनौती देने से परहेज किया था, लेकिन जब स्टीफन ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की तो उसे गुस्साई भीड़ ने मार डाला। स्टीफन पहला मसीही व्यक्ति था जिसे शैतान के लोगों ने मसीह विरोधियों ने मार डाला था। प्यारों, अगर शैतान कुछ नेताओं को यीशु को मार डालने के लिए प्रेरित कर सकता था तो उसके अनुयायियों को निश्चित रूप से अपने लिए इससे कम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। बेशक इस महान विवाद के दौरान प्रभु ने बार बार उस स्थिति में भी विजय दिलाई जो अक्सर हार जैसी लगती थी, यहां भी ऐसा ही हुआ। स्टीफन की मृत्यु के बाद साउल को उस अवसर पर निभाई गई भूमिका के कारण सन्हेड्रिन परिषद का सदस्य चुना गया। कुछ समय के लिए वह शैतान के हाथों में परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक शक्तिशाली साधन था। यह साउल सन्हेड्रिन का मेंबर बना और परमेश्वर के लोगों को मार डालने और सताने का काम करता था। लेकिन हम आगे चलकर देखते हैं कि परमेश्वर उसको पकड़ता है और उसको बदल डालता है। लेकिन जल्द ही इस निर्दयी उत्पीड़क को उस चर्च के निर्माण में लगाया जाना था जिसे वह अब नष्ट कर रहा था। परमेश्वर की कलीसिया के निर्माण में परमेश्वर उसे जल्द ही लगाने वाला था। शैतान से भी अधिक शक्तिशाली परमेश्वर की शक्ति है। उसने साउल को शहीद स्टीफन की जगह लेने, उसके नाम के लिए प्रचार करने और पीड़ा सहने और उसके खून के माध्यम से उद्धार के समाचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए चुना था। इसे भी हम पढ़ते हैं बहन एलन जी वाइट की पुस्तक द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स पृष्ठ 102 में। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम देखते हैं कि बुराई से अच्छाई निकलती है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम बुराई से अच्छाई नहीं बल्कि और भी बुराई निकलती देखते हैं तो हम क्या करें? तो हम फिर भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, उससे लिपटे रह सकते हैं और यह भरोसा कर सकते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर अंत में अच्छा ही करेंगे और उन्हें विजय दिलाएंगे। शिष्य ना केवल पूर्वाग्रहों से जूझ रहे थे, पहले के बाद विचार से जूझ रहे थे, पहले के धारणाओं से जूझ रहे थे जो उन्हें यीशु द्वारा सिखाई गई बातों को समझने से रोकते थे, बल्कि वे राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों को भी साझा करते थे। इसका एक उदाहरण सामरी महिला की कहानी है जिसे यीशु ने पीने के लिए पानी मांगा था। शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि उसने उस सामरी महिला से बात की थी। कैसेरिया में रहने वाले एक रोमन सेंचुरियन कॉर्नेलियस के वृतांत में भी राष्ट्रीय पूर्वाग्रह सामने आए। कुनेलियस एक भक्ति व्यक्ति था और परमेश्वर से डरता था। हम पाते हैं प्रेरितों के काम 10:2 में और स्थानीय लोगों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। एक स्वर्गदूत ने उसे याफा में पत्रस को बुलाने का निर्देश दिया। आप देखिए प्रेरितों के काम 10:3-8 में आप देख सकते हैं। इस बीच जोपा में पत्रस प्रार्थना करने के लिए छत पर जाता है। वह आराम करता है और भूख लगने लगती है और अपने मेजबानों द्वारा दोपहर का भोजन तैयार करने की प्रतीक्षा करते समय उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। उसे दर्शन मिलता है, स्वर्ग खुल जाता है और चारों कोनों पर बंधी एक बड़ी चादर जैसी कोई चीज नीचे उतारी जाती है। कपड़े के अंदर कई तरह के जीव हैं जिन्हें वह प्रदूषित या अशुद्ध मानता है और जिन्हें उसे मारकर खाने के लिए कहा जाता है। इसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10:11-14 में। परंतु हम पत्रस की प्रक्रिया को पाते हैं। प्रेरितों के काम 10:14 पद कहता है, परंतु पत्रस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। इस दर्शन में परमेश्वर ने पत्रस को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। आज कुछ लोग सोचते हैं कि यही वह समय है जब परमेश्वर ने मानव आहार में बदलाव किया है ताकि लोग अपनी पसंद का कुछ भी खा सके। पत्रस को दर्शन से ऐसा कुछ नहीं मिला। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि इसका क्या अर्थ है, यह पहले स्पष्ट नहीं था। जब कुरनेलियस के आदमी पहुंचे और अपना मिशन समझाया तो पत्रस उनके साथ वापस जाने के लिए बाध्य हुआ। जब पत्रस कुरनेलियस से मिला तो वह कुरनेलियस को दर्शन का अर्थ बताने में सक्षम हुआ। मसीह पूरी दुनिया का उद्धार करता है, यही उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर उसे सिखाने चाहता था। वह केवल यहूदी जाति के लिए नहीं आया, केवल यहूदी जाति के लिए नहीं मरा, परंतु उसका उद्धार पूरा दुनिया के लिए फैला हुआ है। अन्य जाति भी अनमोल आत्माएं हैं जिनके लिए मसीह अपना प्राण दिया है। आप पढ़िए प्रेरितों के काम 10:34-48 पद तक। पत्रस एक ऐसा सबक सीख रहा था जिसे हम सभी को अभी भी सीखने की जरूरत है। मसीह में सभी अवरोधों को तोड़ दिया गया है और यहूदी और गैर यहूदी के बीच, सभी लोगों के बीच अब कोई भेद नहीं, लेकिन हर जाति में जो उसे डरता है और धार्मिकता के काम करता है वह उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10:35 में। हम सब मसीह में एक हैं प्यारो, यही बाइबल हमें सिखाती है। परमेश्वर ने हमें प्यार करने वाले प्राणी के रूप में बनाया है और हम तभी प्यार कर सकते हैं जब हमें स्वतंत्र बनाया जाए। इस दुनिया में बहुत बड़ा विवाद इस बात से प्रभावित है कि लोगों ने पवित्र लेकिन बहुत महंगे उपहार क्रूस कीमत को प्रकट करता है के साथ क्या किया है और अभी भी क्या कर रहे हैं। जैसा कि हमने आज देखा है, कुछ लोगों ने जब सुसमाचार का सामना किया तो पछताव किया और अपने दिल यीशु को दे दिए, लेकिन दूसरों ने जब उसका सामना किया तो वे परमेश्वर के संदेशवाहक को ही हत्या कर दिए। स्वतंत्रता एक अनमोल उपहार है, लेकिन हमें इस बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हम इसके साथ क्या करते हैं। प्यारों भाइयों और बहनों, हम सबों को स्वतंत्रता का उपहार मिला है कि हम सोच सकते हैं और चुनाव कर सकते हैं। चलिए हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसके रास्ता में चलने का चुनाव करें, उसकी आज्ञाओं को माने। जब परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे दिल में बोलता है, अपने संदेश वाहकों के द्वारा बात करता है, हम उसके बातों को सुने, पछताव करें और अपना रास्ता को ठीक करें और उसके रास्ता में चले, ना कि ढिठाई करें और उसके विरुद्ध काम करें, उससे और उसके लोगों से लड़ाई करें। परमेश्वर से आई हम प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय को पिघाल देगा अपने आत्मा के द्वारा कि हम सही चुनाव कर सके और उसको अपनाएं, क्योंकि वह जीवनदाता है, वह हमारा सब कुछ देने वाला है और जब हम उसे अपनाते हैं, उसको मानते हैं, उसके राह में चलते हैं, तो हमें सही रास्ता में अगुवाई करेगा, ले चलेगा और हमें अनंत जीवन देगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस तेरे वचन के लिए। हम तेरे पास आना चाहते हैं और हम तेरे राह में चलना चाहते हैं। हम सबों को तो स्वीकार कर, ग्रहण कर, हम फिर से इस संवाद के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सबों को तेरे आत्मा दे और तेरे राह में चला और हम सबों को तेरे राज में चला। हम इस विनती को महान दयालु
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudevenpost.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।